एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
बिल्कुल।
नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें दुनिया अक्सर दो ग्लोबल सुपरस्टार्स बियॉन्से और सोलांज नोल्स की माँ के तौर पर ही ज्यादातर जानती है।
हाँ।
लेकिन टीना नोल्स लॉसन की पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं बहुआयामी है। उनकी संस्मरण मैट्रियार्क ऑन फेथ फैमिली एंड फाइंडिंग योर फाउंडेशन हमें उनकी अपनी ही एक असाधारण यात्रा पर ले जाती है।
बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी माँ की कहानी नहीं है, ये तो एक असाधारण महिला की जिंदगी का एक अकच्चा चिट्ठा है, उनकी अपनी कहानी।
हाँ,
ये लुइजियाना की क्रियोल जड़ों से शुरू होकर फैशन, बिजनेस, कला की दुनिया में अपनी पहचान बनाने और फिर अंततः नोल्स कार्टर परिवार की मैट्रियार्क या कुल माता बनने तक का सफर है।
और ये न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर भी रही है ना।
हाँ बिल्कुल, जो दिखाता है कि उनकी कहानी से कितने लोग जुड़े हैं, कितना रेजोनेट किया है लोगों ने।
हाँ, और ये कहानी सिर्फ ग्लैमर की नहीं है, इसमें संघर्ष है, दृढ़ता है और अपनी शर्तों पर जीवन को गढ़ने की एक प्रेरणा भी है।
सही कहा।
हमारे पास उनकी आत्मकथा मैट्रियार्क के अंश है और आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन स्रोतों के जरिए टीना नोल्स लॉसन के जीवन के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको समझें।
बिल्कुल।
मतलब एक डिज़ाइनर के तौर पर, एक उद्यमी, कला संरक्षक, समाज सेवी और हाँ, बेशक एक माँ और दादी के रूप में भी।
और ये देखना भी जरूरी है कि कैसे उनकी रचनात्मकता, उनका विश्वास और उनका जो लचीलापन है,
जी
वो न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि व्यापक सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए भी मायने रखता है। उनकी कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, खासकर जब हम विरासत की बात करते हैं, उद्देश्य की या फिर चुनौतियों से उभरने की।
ठीक है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उनकी जड़ों से। टीना नोल्स लॉसन का बचपन कैसा था, मतलब किन चीजों ने उन्हें वो बनाया जो वो बनी?
तो उनकी कहानी शुरू होती है टेक्सास के गैल्वेस्टन में। उनका जन्म का नाम सेलेस्टीन एन बेन से था और वो सात भाई बहनों में सबसे छोटी थी।
अच्छा,
उनकी माँ एग्नेस डेरोन वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली दर्जी थी और उनके पिता लूमिस एल्बर्ट बेन से एक लॉन्गशोरमैन थे, मतलब बंदरगाह पर कड़ी मेहनत करने वाले मजदूर। तो उनका बचपन लुइजियाना की क्रियोल विरासत और संस्कृति में आप कह सकते हैं रचा बसा था।
अच्छा, क्रियोल विरासत, मतलब क्या था इसका, कोई खास असर पड़ा उन पर?
हाँ जरूर। तो उसमें क्या है कि लुइजियाना क्रियोल संस्कृति का मतलब है फ्रांसीसी, अफ्रीकी, स्पैनिश और अमेरिकी प्रभावों का एक अनूठा सा मिश्रण।
ओके।
इसमें परिवार पर बहुत मजबूत जोर होता है, खान पान, संगीत और एक खास तरह की संसाधनशीलता होती है, जिसे अंग्रेजी में रिसोर्सफुलनेस कहते हैं, मतलब कम में ज्यादा करना।
हाँ,
टीना की माँ की जो सिलाई की कला थी और घर चलाने का तरीका, वो इसी विरासत का हिस्सा था। उन्होंने ये सीखा कि सुंदरता और गरिमा अपने हाथों से बनाई जा सकती है, भले ही साधन सीमित हों।
अच्छा, तो ये सीखना तो उनके बहुत काम आया होगा बाद में।
हाँ बिल्कुल। वो किताब में अपनी माँ को अपना पहला गुरु मानती हैं। वो बताती हैं कि सिलाई मशीन की जो आवाज़ थी वो उनके बचपन का साउंडट्रैक था।
वाह,
उन्होंने अपनी माँ से न सिर्फ कपड़े बनाना सीखा बल्कि ये भी सीखा कि कैसे बचे खुचे कपड़ों के टुकड़ों से भी कुछ खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक हुनर नहीं था, ये प्यार जताने का और मुश्किल हालात में टिके रहने का एक तरीका बन गया था और पिता से उन्हें मेहनत और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का पाठ मिला।
और वो दौर भी था जब अमेरिका में नस्ली अलगाव वो काफी ज्यादा था, उसका अनुभव कैसा रहा उनके लिए?
हाँ, वो अनुभव काफी मुश्किल और दर्दनाक था और उन्होंने इसके बारे में खुल के लिखा भी है। एक बटे हुए समाज में रहना, भेदभाव का सामना करना, इन सब ने उनमें न्याय की एक तीव्र भावना पैदा की। उनमें एक ऐसी दुनिया बनाने की इच्छा जागी जहां अश्वेत सुंदरता और प्रतिभा को बिना किसी समझौते के सम्मान मिले। तो ये शुरुआती साल उनके लिए एक भट्टी की तरह थे जहां उनकी पहचान के जो मूल तत्व हैं, विश्वास, परिवार, फैशन और संघर्ष, वो तपकर मजबूत हुए।
स्कूल के बाद उनका सफर कैसे आगे बढ़ा?
स्कूल में वो एक सिंगिंग ग्रुप द विल्टोन्स का हिस्सा थी, तो परफॉर्मेंस की दुनिया से उनका पहला परिचय तो वहीं हुआ।
अच्छा,
लेकिन हाई स्कूल के बाद वो कैलिफोर्निया चली गई और शिसेडो कॉस्मेटिक्स के लिए मेकअप आर्टिस्ट बनी और ये अनुभव उनकी आंखें खोलने वाला था।
कैसे, मतलब क्या देखा उन्होंने ऐसा?
उन्होंने देखा कि भाई ब्यूटी इंडस्ट्री में अश्वेत महिलाओं के लिए कितनी कम जगह थी, मेकअप पैलेट्स में उनके स्किन टोन के शेड्स ही नहीं होते थे।
ओ
मतलब बाहरी जैसा महसूस कराया जाता था। और यही उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो अश्वेत महिलाओं की सुंदरता का जश्न मनाने वाली दुनिया चाहती हैं, तो उन्हें वो दुनिया खुद बनानी होगी।
अच्छा, तो यहीं से वो आइडिया आया एंटरप्रेन्योरशिप का।
हाँ बिल्कुल, इसी सोच के साथ वो ह्यूस्टन टेक्सास वापस आई और महज 19 साल की उम्र में अपना सैलून हेडलाइनर्स खोला।
19 साल की उम्र में?
हाँ, और ये सिर्फ क्या कहते हैं, बिजनेस वेंचर नहीं था।
तो फिर क्या था ये?
ये एक सेफ स्पेस था, एक अभयारण्य कह लीजिए, एक ऐसी जगह जहां अश्वेत महिलाएं आ सकती थीं, खूबसूरत महसूस कर सकती थीं, उन्हें समझा जाता था, उन्हें समर्थन मिलता था। और सैलून चलाते हुए उन्होंने महिलाओं के मनोविज्ञान को समझा, समुदाय कैसे बनाते हैं ये सीखा, और सुंदरता के व्यवसाय की बालिकियों को भी समझा। ये उनके लिए एक तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी।
ठीक है, बिल्कुल। और फिर आता है डेस्टिनीज चाइल्ड वाला दौर। ये ग्रुप तो उनके घर से शुरू हुआ था शायद।
हाँ बिल्कुल, ग्रुप जिसे पहले गर्ल्स टाइम कहते थे, उनके लिविंग रूम में ही प्रैक्टिस करता था। अब जब शुरुआती दौर में रिकॉर्ड लेबल या स्टाइलिस्ट ग्रुप के विजन को समझ नहीं पाए या उन्हें सही कपड़े नहीं दिए, तो टीना ने कमान अपने हाथों में ले ली।
अच्छा,
ठीक वैसे ही जैसे उनकी माँ ने उनके लिए कपड़े बनाए थे। मतलब जरूरत ने उन्हें डिजाइनर बना दिया है ना।
हाँ, आप कह सकते हैं। उन्होंने बताया है किताब में कि कैसे बहुत सीमित बजट में और अक्सर रात रात भर जागकर उन्होंने ग्रुप के वो मशहूर कोऑर्डिनेटेड आउटफिट्स बनाए। वो सिर्फ कपड़े नहीं थे, वो एकता, शक्ति और बिना किसी हिचक के अश्वेत ग्लैमर का प्रतीक थे। ये उनकी रचनात्मकता और संसाधनशीलता का सबूत था, वही गुण जो उन्होंने अपनी माँ और अपनी क्रियोल जड़ों से सीखे थे।
सही।
और यहाँ हम उनकी कहानी का वो पहला बड़ा सबक देखते हैं, कैसे उन्होंने जरूरत और सीमाओं को अपनी अनूठी पहचान या सिग्नेचर स्टाइल बनाने के अवसर में बदल दिया। और उनके डिजाइन्स तो डेस्टिनी स्टाइल की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा बन गए।
बिल्कुल, ये उनकी दशकों की मेहनत का नतीजा था और इसने उन्हें एक दूरदर्शी स्टाइलिस्ट और डिजाइनर के रूप में स्थापित किया। डेस्टिनी स्टाइल की सफलता के बाद टीना की जिंदगी और करियर एक नए मुकाम पर पहुंचे, लेकिन इसके बाद उनकी निजी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दौर शुरू हुआ।
आप उनके तलाक और उसके बाद की जीवन की बात कर रही हैं?
हाँ, किताब का एक अहम हिस्सा उनके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और आत्मचिंतन पर केंद्रित है। डेस्टिनी स्टाइल के भंग होने और वैश्विक सफलता के शिखर के बाद उन्हें अपनी पहचान को माँ, मैनेजर और पत्नी की भूमिकाओं से परे फिर से परिभाषित करना था। वो अपने 31 साल के विवाह के टूटने के दर्दनाक अनुभव के बारे में काफी खुलकर बात करती हैं।
ये उनके लिए एक मुश्किल लेकिन जरूरी आत्मखोज की यात्रा थी,
एक तरह से खुद को फिर से खोजना या गढ़ना। सही कहा, उन्होंने खुद से सवाल पूछा, बाकी सबके बिना टीना कौन है। इस खोज ने उन्हें अपने जुनून की तरफ मोड़ा, खासकर कला की ओर।
अच्छा,
उन्होंने अश्वेत कलाकारों के काम को इकट्ठा करना और उन्हें बढ़ावा देना शुरू किया। और फिर उन्हें दोबारा प्यार मिला जब उन्होंने 15 में अभिनेता रिचर्ड लॉसन से शादी की। वो इस रिश्ते को आपसी सम्मान और खुशी पर आधारित एक बराबरी की साझेदारी बताती हैं।
और इसी दौरान वैको थिएटर सेंटर की भी स्थापना की।
हाँ, अपने पति रिचर्ड लॉसन के साथ मिलकर वैको यानी वेयर आर्ट कैन ओकर, ये लॉस एंजल्स में एक ऐसा केंद्र है जो अश्वेत कलाकारों और कहानीकारों की अगली पीढ़ी को मंच और समर्थन देता है। ये उनके जीवन भर के काम यानी अश्वेत प्रतिभा के लिए जगह बनाने की इच्छा का निचोड़ है, आप कह सकते हैं।
किताब के अंत में वो दादी बनने की भूमिका को अपनाने और अपनी माँ से सीखी बातों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने की खुशी जाहिर करती हैं।
हाँ, ये शांति और उद्देश्य का अध्याय है।
तो इस पूरी यात्रा को अगर हम देखें तो उनके मूल दर्शन या जीवन के सिद्धांत क्या रहे हैं, क्या चीज उन्हें चलाती रही है?
देखिए, मिट्रियार के केंद्र में मुझे लगता है तीन स्तंभ हैं, विश्वास, परिवार और दृढ़ता, जिसे अंग्रेजी में फेथ, फैमिली एंड फोर्टिट्यूड कहा गया है। उनकी जो आध्यात्मिक आस्था है वो उनकी ताकत का बड़ा स्रोत रही है, जिसने उन्हें मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत दी, चाहे वो सार्वजनिक आलोचना हो, व्यक्तिगत दुख हो या पेशेवर असफलता। परिवार हमेशा उनकी प्राथमिकता रहा, जिसके लिए उन्होंने शुरुआत में संघर्ष किया और बाद में जिनकी सफलता के लिए उन्होंने सब कुछ किया। और दृढ़ता तो उनकी कहानी के हर पन्ने पर दिखती है।
उनका एक सिद्धांत जानबूझकर निर्माण का भी जिक्र आता है किताब में, यानी इंटेंशनल क्रिएशन। इसका क्या मतलब है?
इसका सीधा मतलब है कि वो अवसरों का इंतजार करने में विश्वास नहीं करती, वो अवसर बनाने में विश्वास करती हैं। चाहे अपना सैलून खोलना हो या जब किसी ने मदद नहीं की तो खुद ही पूरी गर्ल ग्रुप के लिए वार्डरोब डिजाइन कर लेना हो, उनका जीवन इसी सिद्धांत का प्रमाण है। ये सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से अपनी किस्मत गढ़ना है।
और उनकी प्रेरणा शक्ति क्या थी, मतलब शुरू में क्या था और बाद में ये कैसे बदला?
शुरुआत में ये अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन बनाने की इच्छा थी। वो उन्हें उस नस्लवाद और सीमाओं से बचाना चाहती थीं जिनका सामना उन्होंने खुद किया था। फिर जब उनकी बेटियों का करियर आगे बढ़ा तो प्रेरणा थोड़ी बदली। अब ये अश्वेत महिलाओं की कहानी को सही ढंग से पूरी प्रामाणिकता और खूबसूरती के साथ दुनिया के सामने रखने की बन गई। जो कपड़े उन्होंने डिजाइन किए वे सिर्फ सजावट नहीं थे, वे आत्मविश्वास और सम्मान का प्रतीक थे।
और बाद के सालों में
उनकी प्रेरणा एक तरह से सांस्कृतिक जिम्मेदारी निभाने की ओर मुड़ गई, यानी अन्य युवा प्रतिभाशाली अश्वेत व्यक्तियों के लिए रास्ते बनाना, जैसा वो WACO के जरिए कर रही हैं।
उनका वो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का तरीका भी खास बताया गया है, पिविट, प्रे और परसिवियर। पिविट, प्रे एंड परसिवियर, इसे थोड़ा समझाएंगे?
बिल्कुल। पिविट यानी रास्ता बदलना। जब रिकॉर्ड लेबल ने डेस्टिनीज चाइल्ड के लिए कपड़ों का बजट देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने बहस नहीं की, वो अपनी सिलाई मशीन की ओर मुड़ गईं।
हाँ।
जब ब्यूटी इंडस्ट्री ने उनकी जरूरतों को नजरअंदाज किया तो उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने अपना सैलून खोल दिया। वो बाधाओं को अंत नहीं मानती बल्कि एक संकेत मानती हैं कि शायद दिशा बदलने की जरूरत है।
अच्छा।
प्रे यानी प्रार्थना। संकट के क्षणों में वो स्पष्टता और शक्ति पाने के लिए अपनी आस्था का सहारा लेती हैं। और परसिवियर यानी लगे रहना, हार न मानना। उनकी जो अथक कार्यनीति है वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। वो मुश्किलों का सामना कड़ी मेहनत से करती हैं।
चलिए अब उनके जीवन के उन तीन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों पर बात करते हैं जिन्होंने उनकी दिशा ही बदल दी। पहला कौन सा मानेंगे आप?
पहला, बिल्कुल। 1973 में, महज 19 साल की उम्र में हेडलाइनर सैलून खोलना। ये सिर्फ एक बिजनेस शुरू करना नहीं था, ये उनकी आर्थिक और रचनात्मक स्वतंत्रता की घोषणा थी।
हाँ।
एक युवा अश्वेत महिला द्वारा अश्वेत महिलाओं के लिए बनाया गया एक सुरक्षित स्थान, इसने उन्हें एक युवा लड़की से एक व्यवसायी और समुदाय के एक सम्मानित सदस्य बना दिया।
और दूसरा?
दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ आया 1990s के दशक के मध्य में, जब वो डेस्टिनीज चाइल्ड के लिए वार्डरोब डिजाइनर बनी। जैसा हमने बात की, ये जरूरत से पैदा हुआ कदम था।
हाँ हाँ।
जब बड़े फैशन ब्रांड्स ने एक नई नवेली ब्लैक गर्ल ग्रुप को कपड़े देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो टीना ने खुद ये जिम्मेदारी उठाई।
अनजाने में ही सही।
उन्होंने आधुनिक संगीत इतिहास के सबसे यादगार विजुअल लुक्स में से कुछ तैयार किए।
बिल्कुल।
इस मोड़ ने उन्हें सिर्फ बियॉन्से की माँ की पहचान से निकालकर एक सम्मानित रचनात्मक शक्ति के रूप में स्थापित किया।
सही बात है।
और तीसरा निर्णायक मोड़, तीसरा और शायद व्यक्तिगत रूप से सबसे गहरा मोड़ था 2009-2011 के दौरान मैथ्यू नोल से उनका तलाक।
हाँ।
31 साल का रिश्ता टूटना बेहद दर्दनाक था, लेकिन अंततः ये उनके लिए मुक्तिदायक भी साबित हुआ। इसने उन्हें पहली बार सिर्फ टीना के रूप में अपनी पहचान का सामना करने के लिए मजबूर किया, बिना किसी और भूमिका के टैग के। ये तलाक उनकी आत्मखोज का, अपनी आवाज को फिर से पाने का, कला जैसे अपने जुनून को आगे बढ़ाने का, और अंततः एक नए बराबरी वाले प्यार रिचर्ड लॉसन के साथ को पाने का जरिया बना।
ये वाकई बहुत ही परिवर्तनकारी पल थे। इन सब अनुभवों से गुजरते हुए टीना की कहानी हमें इंसानी रिश्तों और जीवन के बारे में क्या सिखाती है?
बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले तो ये कि हमारी जड़ें, हमारा परिवार और हमारे शुरुआती अनुभव कितने मायने रखते हैं। उनकी माँ एग्नेस उनकी पहली मेंटर थी जिन्होंने उन्हें हुनर के साथ साथ मुश्किलों में रास्ता बनाना सिखाया। उनकी पहले पति मैथ्यू नोल्स के साथ उनका रिश्ता जटिल था। वो बिजनेस दिमाग थे, टीना क्रिएटिव थी, दोनों ने मिलकर एक अंपायर खड़ा किया, लेकिन जाहिर है इसमें उतार चढ़ाव भी रहे।
और उनकी बेटियों के साथ उनका रिश्ता?
जाहिर है बियॉन्से और सोलोंज उनकी सबसे बड़ी सहयोगी रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों से भी सीखा। कैली रोलैंड के साथ उनका रिश्ता भी खास है, जिसे वो अपनी बेटी मानती हैं।
हाँ।
ये दिखाता है कि परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता, प्यार और प्रतिबद्धता से बनता है। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि असली लड़ाई अक्सर किसी व्यक्ति से नहीं होती बल्कि व्यवस्था से होती है। नस्लवाद, लिंगवाद, इंडस्ट्री का नजरअंदाज करना।
और चुनौतियाँ, क्या वो असफलताओं पर भी बात करती हैं?
हाँ, वो इंडस्ट्री गेट कीपिंग, शुरुआती आर्थिक तंगी और प्रसिद्धि के साथ जो सार्वजनिक जांच आती है, वैसी चुनौतियों का जिक्र करती हैं। वो डेस्टिनीज चाइल्ड के लाइनअप में हुए बदलावों पर एक माँ के दर्द के साथ बात करती हैं, बिना किसी पर दोष मढ़े।
तो इन सभी अनुभवों को मिलाकर देखें तो टीना नोल्स लॉसन की कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? ये हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है?
मेरे ख्याल से ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो बाधाओं का सामना कर रहा है, या अपने जुनून को पेशे में बदलना चाहता है, या फिर अपने जीवन में एक उद्देश्य और विरासत बनाना चाहता है। ये दिखाती है कि पुनर्निर्माण और पुनः खोज किसी भी उम्र में संभव है।
हाँ, और ये नेतृत्व का एक अलग मॉडल भी पेश करती है। सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलना, उन्हें सशक्त बनाना, सेवा के जरिए नेतृत्व करना, अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आसमान छूना।
बिल्कुल, ये सिखाती है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये सामूहिक उत्थान है। जब आप दूसरों के लिए अवसर बनाते हैं, तो आप अपनी विरासत को और मजबूत करते हैं।
सही।
और ये भी कि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सीमाएं या जरूरतें ही बन जाती हैं, अगर आप उन्हें रचनात्मकता से अवसर में बदल दें।
चलिए, इस पूरी चर्चा को समेटते हुए तीन मुख्य बातें निकालते हैं जो हम टीना नोल्स लॉसन की कहानी से सीख सकते हैं। पहली, एक भावनात्मक सीख।
भावनात्मक रूप से सबसे शक्तिशाली सबक शायद बिना शर्त प्यार का है, अनकंडीशनल लव, लेकिन उसे एक सक्रिय क्रिया के रूप में देखना। जैसा कि किताब में कहीं कहा गया है, प्यार सिर्फ वो नहीं है जो आप महसूस करते हैं, ये वो है जो आप हर दिन करते हैं, खासकर तब जब आपका करने का मन नहीं करता।
वाह,
ये दिखाता है कि सच्चा समर्पण भावनाओं से परे जाकर लगातार प्रयास की मांग करता है, चाहे वो परिवार के लिए हो या अपने काम के लिए।
ये बहुत गहरी बात है। दूसरी, एक बौद्धिक सीख।
बौद्धिक रूप से मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात है विभिन्न भूमिकाओं का रणनीतिक एकीकरण, स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन। टीना ने वर्क लाइफ बैलेंस खोजने की जो पारंपरिक कोशिश होती है वो करने के बजाय अपनी अलग अलग भूमिकाओं, माँ, उद्यमी, क्रिएटिव डायरेक्टर, पत्नी को इस तरह से एकीकृत किया कि हर भूमिका ने दूसरी को मजबूत किया।
अच्छा, कैसे?
जैसे उनका फैशन का काम उनकी बेटियों के करियर को आगे बढ़ाता था, उनके बिजनेस कौशल ने परिवार की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत किया। ये प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के बजाय तालमेल, सिनर्जी खोजने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे आप भूमिकाओं का सामंजस्य कह सकते हैं।
बिल्कुल सही। और अंत में एक सार्वभौमिक सीख जो हर किसी पर लागू हो सकती है।
सार्वभौमिक सबक है रोजमर्रा की उत्कृष्टता का चक्रवृद्धि प्रभाव, मतलब द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ डेली एक्सलेंस। उनकी सफलता किसी एक बड़े नाटकीय कदम या किस्मत के भरोसे नहीं आई। ये हर काम में, चाहे वो एक पोशाक बनाना हो, परिवार से संवाद हो या बिजनेस का कोई फैसला हो, लगातार उत्कृष्टता और गुणवत्ता बनाए रखने के छोटे छोटे रोजमर्रा के विकल्पों से बनी है। ये दिखाता है कि ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ किए गए छोटे दोहराए जाने वाले काम अंततः असाधारण परिणाम देते हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक मानसिकता है।
तो जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। टीना नोल्स लॉसन ने अपनी विरासत सचमुच टांके दर टांके बनाई, अक्सर जरूरत और सीमाओं के बीच से रास्ता निकालते हुए।
तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने जीवन में, अपनी मौजूदा परिस्थितियों में किन जरूरतों या सीमाओं को अपनी अनूठी पहचान या विरासत बनाने के अवसर में बदल सकते हैं। हम अपनी नींव कैसे इतनी मजबूत कर सकते हैं कि न केवल हम उस पर टिके रहें, बल्कि दूसरे भी उस पर अपने सपनों का निर्माण कर सकें।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।